તારીખ 19/3/1998 શ્રી સ્વાનુભૂતિ દર્શન પ્રશ્ન 310 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 244
ત્યાંથી જ જરૂરી છે. પ્રશ્ન 310 થોડી શરૂઆત થઈ છે, ફરીથી લઈએ. પ્રશ્ન એ કર્યો છે કે આત્મા પોતાને ઓળખી શકે અથવા સ્પષ્ટ ઓળખી શકે એવો પ્રશ્ન કર્યો છે. તો સિદ્ધિ હા પાડી છે કે હા, આત્મા ઓળખી શકાય, પોતે જ છે. જ્ઞાન જ્ઞાનને ઓળખી શકે છે એટલી વાત પોતે પ્રતિપાદન કરી છે કે જ્ઞાન જ્ઞાનને ઓળખી શકે છે. અહીંયા એ પ્રશ્ન નથી કર્યો, પ્રશ્ન કરાય કે કેવી રીતે ઓળખી શકે છે, પણ આપણે એ વિચારવું છે. સ્વાધ્યાયમાં સત્સંગની સ્વાધ્યાયની એ વિશેષતા છે કે જે કાંઈ આપણી સામે વિષય આવે એના ઊંડાણમાં આપણે જવું જોઈએ. ભલે એમણે એટલું જ પ્રતિપાદન કર્યું કે જ્ઞાન જ્ઞાનને ઓળખી શકે, તો કેવી રીતે ઓળખી શકે આ વસ્તુ આપણે વિચારવી જોઈએ. કેમ કે આપણી પણ એક સમસ્યા છે કે કેવી રીતે જ્ઞાનને અથવા આત્માને ઓળખી શકાય. કાલે થોડી ચર્ચા થઈ હતી કે ઓળખવાનો એક જ પ્રકાર છે, પરિચય કરવો. તે બીજી રીતે, બીજી વિધિથી, બીજી કોઈ કાર્ય પદ્ધતિથી ઓળખવાનો પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થતો નથી. તો ઓળખી શકાય જ નહીં, પરિચય કરવો જોઈએ પોતાનો. હવે જ્ઞાનનો પરિચય કેવી રીતે કરવો? આપણે સીધી વાત ત્યાંથી એ દ્રષ્ટાંતો કાલે 2-4 લીધા હતા. અને એક વાત એ પણ સમજવા જેવી છે, હિન્દી મેં લેંગે, કે જબ હમ દૂસરી વ્યક્તિ કો પહેચાન સકતે હૈ, કે હમ કોઈ ભી ડ્રેસ બદલ કરકે આ જાય, કોઈ પઠાણ કા, કોઈ ભરવાડ કા, પુરુષ સ્ત્રી કા, સ્ત્રી પુરુષ કા, કોઈ ભી ડ્રેસ બદલતા હૈ. જીસકો પહેચાનતા હૈ ઉનકો પહેચાન લેતા હૈ કે ઉસને ડ્રેસ બદલા હૈ, ફલાણા ફલાણા હૈ. ઓર યે ચાવલ મેં બિના પકાયે ઉસકા પાણી પહેચાન સકતે હૈ, ફરક કરને વાલે કે યે ચાવલ બહોત બઢિયા ક્વાલિટી કા હૈ. મોતી કા પાણી પહેચાન સકતે હૈ કે યે અસલ મોતી હૈ, બહોત પાણી વાલા હૈ. ઓર હીરો કે પથ્થર મેં હીરા કૈસા બનેગા વો પહેચાન સકતા હૈ. પથ્થર તો બિલકુલ લાઇટ બિના કા કંકર જૈસા હોતા હૈ. જીસ પથ્થર મેં સે હીરા નિકલતા હૈ, હીરા બનતા હૈ, વો દિખાવ મેં તો સામાન્ય પથ્થર જૈસા કંકર હોતા હૈ, વૈસા હી દિખતા હૈ, ઉસકો રફ બોલતે હૈ. લેકિન પહેચાન કરને વાલે ઉસમેં સે કૈસા બઢિયા હીરા નિકલેગા વો ભી પહેચાન સકતા હૈ. પરદ્રવ્ય મેં ઇતની જ્ઞાન કી પહેચાન કરને કી તાકત હૈ, તો યહાં તો સ્વયં કો પહેચાનને કી બાત હૈ, તો થોડી પરાધીન બાત હૈ પરમાણુ કી. તો જ્ઞાન જ્ઞાન કા પરિચય કરે તો અવશ્ય પહેચાન શકે. ઓર પહેચાનને મેં ક્યા હોતા હૈ કે પહેચાન સ્વભાવ કી આતી હૈ. પહેચાન કિસ બાત કી આતી હૈ? પહેચાન સ્વભાવ કી આતી હૈ. તો જૈસે જૈસે પ્રતિક્ષણ હમારી આત્મા મેં જ્ઞાન કા પર્યાય ચાલુ હી રહેતા હૈ, હમારા ઉપયોગ બહાર હૈ તો હમ ધ્યાન નહીં દેતે, લક્ષ્ય નહીં કરતે કે હમકો જ્ઞાન કા જ્ઞાન મેં અનુભવ ક્યા હો રહા હૈ. खाने का, पीने का, देखने का, सुनने का, सूंघने का, स्पर्शने का, अनेक प्रकार का अनुभव को हम हर क्षण लेते रहते हैं पंचेंद्रिय के मार्फत, पंचेंद्रिय के विषयों को, और यही हमारी प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। इसलिए चलती रहती है कि हमको वहाँ कुछ सुख बुद्धि भी है, आधार बुद्धि भी है, भोक्ता बुद्धि भी है, इसलिए ऐसा ही हमारा परिणमन निरंतर चलता है। तो हमारा ध्यान हमारे ज्ञान पर नहीं गया अभी तक, अभी तक मैंने अनंत काल बीत गया। वर्तमान जीवन से आपको ये बात का विश्वास आ जाएगा कहने वाले का कि हमारे जीवन में इतना आयु बीता, हमने हमारे ज्ञान पर कभी ध्यान दिया कि नहीं दिया, कि नहीं दिया तो गत भव में फिर अनंत काल में हमने नहीं दिया, ये बात स्पष्ट है। क्योंकि एक दफे ध्यान देने से, पहचान होने से, जो स्वभाव की पहचान जब आती है, तब स्वभाव की जो रुचि उमड़ती है, तब जो संस्कार डल जाता है आत्मा में, उसे आत्मा का छुटकारा हो जाता है। हमारा छुटकारा अभी तक हुआ नहीं, मतलब कि हमने पहचाना नहीं और ध्यान दिया नहीं। तो उतना ही करना है कि जैसे हम हमारे परिणाम को देख करके बता सकते हैं, वो परिणाम में तो स्थूल बातें होती है, स्थूल दोष होते हैं, फिर सूक्ष्म दोष को भी पकड़ने में आता है तो वो भी बता सकते हैं। ज्ञान को पकड़ना थोड़ा और सूक्ष्म है, और ज्ञान स्वयं को पकड़े वो बात प्रक्रिया थोड़ी और सूक्ष्म है, क्योंकि उसमें दिशा बदलती है। और कभी हमने परिणामों की और ज्ञान की दिशा बदली नहीं, हमारे ज्ञान की और दूसरे गुणों की सर्व परिणामों की दिशा पर सन्मुखी हमेशा रही है, स्वसन्मुख कभी हुई नहीं। अब ज्ञान ज्ञान को पहचाने तब ज्ञान स्वयं को देखने जाएगा, तभी पहचानेगा। देखने जाएगा उतना ही नहीं, ज्ञान में अनुभव क्या हो रहा है वो बात जब पकड़ में आएगी तब पहचानने की शुरुआत होगी। ये परिचय है। उपयोग को और जगह से हटा करके अपने आप पे लगाना है ज्ञान को, और ज्ञान में क्या अनुभव होता है जहां तक मालूम नहीं पड़े वहां तक जिज्ञासा पूर्वक उसी जिज्ञासा को चालू रख करके हमको हमारे ज्ञान को, अगर कि ज्ञान को ज्ञान से पहचानने में स्वरूप की पहचान हो जाएगी, स्वभाव की पहचान हो जाएगी, और वो पहचान सिद्ध पद तक ले जाएगी। तो अनंत काल का चारों गति का दुख मिटेगा, अनंत काल का संपूर्ण परमानंद के सुख की प्राप्ति हो जाएगी। वो बात का मूल्यांकन हो गए तो हमारा काम बराबर सतत रूप से चलेगा। बात सुनी हो और मूल्यांकन नहीं आया तो वो बात चलने वाली, वो पुरुषार्थ चलने वाला नहीं है। यहाँ ऐसा पूछा है कि अंतर पुरुषार्थ करे तो पहचान सकता है, तो पुरुषार्थ की बात वो है यहाँ कि ज्ञान ज्ञान को अनुभव में ले और सतत रूप से उसका अनुभव को देखे, वो बिना पुरुषार्थ होगा नहीं। और जगह से हमको हटना होगा, ज्ञान पर आना होगा, ये पुरुषार्थ का कार्य है। हटने का भी पुरुषार्थ से होगा और आने का भी पुरुषार्थ से होगा। तो अभी से चालू करो ये देखने का, ज्ञान को ज्ञान पर ले जाने का चालू करो, देखो क्या रिजल्ट आता है। जो भी उसमें दिक्कत आए उसकी पर चर्चा करेंगे कि क्या तकलीफ है आपको। बाकी इस कार्य में एक सुविधा है, बहुत बड़ी सुविधा है, वो इस बात की है कि ज्ञान के पर्याय में ज्ञान सामान्य और ज्ञान विशेष ऐसे दो अंग हैं, यानी एक ज्ञाकार ज्ञान है और एक ज्ञानाकार ज्ञान है। जो ज्ञान विशेष है वो बाह्य ज्ञान है और ज्ञान सामान्य है वो अंतरंग ज्ञान है, ज्ञान का अंतर का अंग है। दो अंग है इसका, बाह्य अंग और अंतरंग। सुविधा है इस बात की है कि जो अंतरंग ज्ञान है, ज्ञान सामान्य है, उसमें ज्ञान विदन सभी को चालू है, एक भी जीव बाकी नहीं है। अबाल गोपाल 17-18 गाथा में उसे अपन को समय सार में आएगा। निरंतर अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा ही अनुभव में आ ही रहा है सबको, अबाल गोपाल को मैंने सबको। तो श्री गुरु कहते हैं, मैं ज्ञानी कहते हैं कि देख, तेरे ज्ञान सामान्य में ज्ञान का वेदन चालू है, वो एक ज्ञान धारा है। क्या है? धारावाही चालू है, इसलिए ज्ञान धारा है। अभी तक तुमने पर पदार्थ में इतना आकर्षित होकर के देखा तो अपने परिणामों को, दोष को नहीं देखा, तो ज्ञान को तो देखा नहीं। और ज्ञान में भी ज्ञान सामान्य तक जाना है। किस तरह से? कि एक उद्देश्य को धारण करके, कि अंतरंग में, मतलब ज्ञान सामान्य में, अंतरंग में अनुभव दृष्टि से देखा जाए तो अनुभव क्या हो रहा है, इस दृष्टिकोण को, इस उद्देश्य को धारण करके, इस दृष्टिकोण को धारण करके देखने में आए तो ज्ञान वेदन चालू है। चालू करना नहीं पड़ता, वेदन को करना नहीं पड़ता, चालू है वो दिखने में आएगा। जो करना है वो बाहर देखता है, वो दिशा पलट करके अंदर में देखना है, उतनी सी बात है। स्वसंवेदन तो स्वरूप है, आत्मा का स्वरूप है, अनुभूति स्वरूप ही आत्मा है, पर वो स्वरूप का नाश हो ही नहीं सकता। ज्ञान सामान्य में से ज्ञान वेदन का अभाव हो ही नहीं सकता, स्वरूप का त्याग हो जाए तब तक, ये तो बन ही नहीं सकता। जैसे ज्ञान विशेष में पर पदार्थ का प्रतिबिंब होना अनिवार्य है, क्योंकि ज्ञान की स्वच्छता ऐसी है। मलिन ज्ञान में, मिथ्या दृष्टि के ज्ञान में भी पर पदार्थ तो झलकता ही है, क्योंकि ये इसका स्वरूप है। ऐसे ज्ञान सामान्य में ज्ञान वेदन सभी को चालू है, ये एक बड़ी, बहुत बड़ी सुविधा है कि वेदन को लाना नहीं है, करना नहीं है, उत्पन्न करना नहीं है, हो रहा है उनको देखना है। और वो कब दिखेगा? कि जब पर पदार्थ गौण हो जाएगा, पर पदार्थ के प्रति के हमारे रागादि परिणाम गौण हो जाएगा, और हमारे ज्ञान विशेष में ज्ञाकार गौण हो जाएगा। ये तीन स्टेज गौण हो जाएगा, तीन स्टेज की बातें जब गौण हो जाएगी तब दिखेगा, वैसे नहीं दिखेगा। बात समझ में आने पर भी ऐसे नहीं दिखेगा। इसलिए अपन, एक चर्चा चलती है जब वेम को खाने में उतना रस आ गया, किसी को मिठाई में तो किसी को खिचड़ी में, कहीं भी, तो देखना ही नहीं है उसको, जो भी आया वैसे ही आंख मीच के खा लेना है। अपन वो चर्चा चलाते हैं, इसका मतलब क्या है, इसको क्या पॉइंट क्या है, कि हमारे उदय में जो भी परपदार्थ सामने आते हैं उसको एकदम गौण करना है। जब खाने की चीज को गौण करना है तो दूसरी चीज तो गौण करना ही है। कोई चीज में रस नहीं लेना है, कोई भी उदय में रस नहीं लेना है, वो ज्ञानी की आज्ञा है। मंद रस से प्रवेश करना, बिल्कुल रस नहीं आएगा ऐसे नहीं बनेगा, लेकिन मंद रस से प्रवेश करना है। तो क्या है, कि हमको देखने का जांच पास करने का अवकाश रहेगा। तीव्र रस से प्रवृत्ति करने से तो कोई पता ही नहीं चलेगा कि हम क्या कर रहे हैं, हमारे से क्या हो गया, हमारा परिणाम कैसे हो गया, वो तो प्रभावित हो जाएंगे, पूरा आत्मा ही उसमें प्रवाह में चला जाएगा। मंद रस से प्रवृत्ति करने में विचार दशा खुली रहती है और स्पष्ट जाए हम हमारे हित अहित का विचार कर सकेंगे। तो परपत विचार दशा खुली क्यों नहीं रखे, देखो हमको पता है,
हमें ढोंग करते हैं ये पता नहीं चलता है।
देखो आपको टिफिन आया, तो आपको पता है कभी मेरे खाने का टाइम है, टिफिन आए मैं खाने के बैठूंगा, तो आप पहले से क्यों सतर्क नहीं रह सकते। जब चलते हैं तो चलते वक्त हम सतर्क रहते कहीं खड्डे में गिर नहीं जाए, कहीं ठेस लग नहीं जाए, हैं कहीं हम ट्रैफिक से टक्कर नहीं खा जाए, अथड़ा ही न हो जाए। चलते चलते ख्याल रखते कि नहीं करते, दूसरे विचार करते करते उतना ख्याल रखते हैं। ऊपर छल्ला उपयोग में वो बात चल सकती है कि हम दुनिया भर का विचार करते करते भी न गड्ढे में पड़ जाते हैं न किसी से टकराते हैं। हाँ, कितने ज्ञान की ताकत है। तो अगर हम सावधान हो जाए तो कि खाते पहले ही सावधान हो जाए, तो ये उदय आया 12-1 बजे रोटी पेट में डालनी पड़ेगी, उसमें तो कोई चलेगा नहीं, क्योंकि हमारे परिणाम में उतनी ताकत नहीं है कि बिना खाए हम पूरा जीवन बिता दें। तो इसलिए तो रूटीन हो गया है खाने का, तो पहले से सतर्क हो जाए तो इसमें क्या आपत्ति है। बस मंदिर से प्रवेश करो, खाने का चालू करो, और जो भी हमको अच्छा बुरा लगता है खाने में या कोई भी उदय में, तो इसका कारण हुआ कि हमारा अभिप्राय जो इष्ट अनिष्ट बना गए वो हमने तोड़ा नहीं। अमुक प्रकार के प्रयोग की भूमिका में आकर के वो अभिप्राय को हमने तोड़ा नहीं, इसलिए इष्ट अनिष्ट लग जाता है और तीव्र रस हो जाता है। तो वो भी हमें प्रयोग करना है, अभिप्राय पहले तोड़ना है, इसके पहले वो परिणाम जाने वाले नहीं है, वो भी करने का है। अभी तो पॉइंट क्या चल रहा है कि इसको गौण करना है, एकदम गौण करना है। चलो इसको भाड़ा देते हैं, इसमें क्या देखने का है। हमको जीने के लिए खाना है, खाने के लिए जीना नहीं है, दो बात में बहुत फर्क है। एक जीना पड़ता है, डाल देना है, लेकिन तो उसका स्वाद लेने के नहीं जीना है, जीवन ऐसे नहीं बिताना है। फिर अपने परिणाम को गौण करने की बात है। तो ये सब योजनाबद्ध सिस्टम से बात क्यों करते हैं, कि उसमें सहजी परिस्थिति बन सकती है भूमिका अनुसार। वेदना से लेके आगे बढ़ते हैं तो ज्ञान को देखे उस परिस्थिति में हम आ सकते हैं, ये तो भावभाषण का विषय है, पहचानना वो तो भावभाषण का विषय है। तो भावभाषण कब होगा स्वरूप का, नीचे के सभी स्टेज में से हम निकल चुके होंगे तब तो। इसके पहले सीधा तो किसी को भावभाषण आने वाला नहीं है, और नो ज्ञान ज्ञान को देख पाएगा, करना चाहे तो कर पाएगा नहीं। तो अच्छा है कि एक सिस्टम तो अपने समझ में है, वरना बहुभाग लोग ऐसे ग्रंथ पढ़ करके पुरुषार्थ करने में लग जाते हैं कि चलो हम भी ज्ञान ज्ञान को देख करके पहचान कर ले, और होता नहीं है, कर सकते नहीं। जब सकते नहीं तो समस्या खड़ी होती है कि ज्ञानी ने कहा हमने पुरुषार्थ किया लेकिन हमारा काम हुआ ही नहीं, लेकिन वो पुरुषार्थ हुआ ही नहीं है। पुरुषार्थ जो जो स्टेज का पुरुषार्थ होना चाहिए वो तो हुआ ही नहीं है, तो काम होने होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और यहाँ तो पुरुषार्थ होवे और काम नहीं हो ऐसा बनता नहीं कभी, ये तो असंभव है। इसलिए इस सिस्टम पर जाना पड़ता है और उस पर ध्यान खींचा जाता है कि देखो आपको यहाँ तक आना है तो शुरू से यहाँ तक पहुँचना होगा। जब कोई इसी स्टेज में आ जाता है और पर पदार्थ को, राग को और ज्ञान विशेष को गौण कर सकता है और करता है, तब वो अंतरंग में अनुभव दृष्टि से देखता है तो उनको अपनी ज्ञान धारा मालूम पड़ती है ये चल रही है। जब ये मालूम पड़ती है तो उसका आविर्भाव होने लगता है, क्योंकि ज्ञान विशेष को तिरोभूत किया, गौण किया माने तिरोभूत किया, तो ये गौण होते ही इसका आविर्भूत होने लगता है। ये आविर्भूत होने से, इस प्रयोग बार बार करने से पूरी पहचान आती है, पहचान आती है तो महिमा इतनी बढ़ जाती है और ज्ञान सामान्य प्राणी का प्रैक्टिस इतना अच्छा हो जाता है कि वो पहचान करने वाला जीव महिमा में आकर के अल्प समय में स्वानुभूति को, शुद्धोपयोग को प्राप्त कर लेता है सहज रूप से। तो इस विषय में कोई अस्पष्टता लगती हो तो प्रश्न कर सकते हो कि इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या। बाकी ये प्रैक्टिस जो है उसे पहचान नहीं आए ऐसा बनने वाला नहीं है। जब ज्ञान ज्ञान को देखेगा तो अपने सामान्य को में वो अपने ज्ञान धारा को, ज्ञान वेदन को पकड़ पाएगा और वो आविर्भूत होगा, पहचान होगी तो रुचि और महिमा इतनी अंदर से जोर से आएगी और पुरुषार्थ भी रुचि अनुसार इतने जोर से स्वसन्मुखता के चलेगा कि अल्पकाल में निर्विकल्प दशा में आ जाएगा। तो ये पहचान होने के लिए शास्त्र स्वाध्याय है। लक्ष्य थवाने तेहनो कया शास्त्र सुखदायी, शास्त्र स्वाध्याय क्यों, ये लक्ष्य तक पहुंचने का है। लक्ष्य पूर्वक ये प्रक्रिया शुरू रहने से स्वानुभूति है। 15 गाथा चली अपने को तो वहां लक्ष्य का बात अध्याय था। पहले जिसको लक्ष्य हुआ है वहां किसको इसको स्वानुभूति है वो कथा 15 गाथा के आचार्य महाराज ने कही। पहले लक्ष्य आना चाहिए, वेदन पूर्वक लक्ष्य हो जाता है वो वेदन पूर्वक लक्ष्य होता है। फिर लक्ष्य पूर्वक जो वेदन आविर्भूत हुआ जाता है उसे स्वानुभव आता है। बिना लक्ष्य स्वानुभव आने वाला ही नहीं है। पहले पहचान होगा फिर स्वानुभव आएगा, वो दूसरा संकेत है, ये तीसरा संकेत है। स्पष्ट बात उतनी से तो पहले संकेत, दूसरे संकेत और तीसरा संकेत की लाइन भी बिठानी पड़ेगी और वेदना से लेकर के अवलोकन और भेद ज्ञान तक की लाइन भी बिठानी पड़ेगी। ये सभी स्टेज में आकर के अगर स्वानुभव होता है तो संसार कट जाता है, उसका संसार फिर अनंत काल रहने वाला है ही नहीं, गारंटेड इसका मोक्ष असंख्य समय में होने वाला है। અત્યારથી તો કોઈ કામ થવા નથી, નિશાળમાં પહેલો એકડો આવતો ન હોય એને તમે પ્રોબ્લેમ આપો મેટ્રિકનો કે 4th સ્ટાન્ડર્ડનો, તમે આ પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કરો, પણ હજી એકડો તેને આવડતો નથી, એમ પહેલા સ્ટેજમાં તો પ્રવેશ નથી। નહીં 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 નહીં, એ કોઈ એ કોન્સેપ્ટમાં નહીં આવવાનું, શું કરવાનું થાય નહીં, આપણે અહીં સુધી પહોંચવું છે ને, આપણે 5 વર્ષના છોકરાને શું પૂછીએ છીએ કે દેખો તુમકો સ્કૂલ મેં બિઠાયા અબ તુમકો ક્યાં હોના હૈ એસા પૂછતે હૈ, તો કોઈ લડકા બોલતા કે મુજે પાયલોટ હોના હૈ, ક્યાં બોલતા હૈ, પ્લેન ચલાને વાલા પાયલોટ બનને કી બાત 5 સાલ કા બચ્ચા કરતા હૈ કે નહીં કરતા હૈ, મેં નહીં હો પાઉંગા એસા કરતા હૈ ક્યા, मेरे को ये बनना है, मेरे को वो बनना है, इंजीनियर बनना है, मेरे को डॉक्टर बनना है। 5 साल का बच्चा बात नहीं करता कि मेरे को डॉक्टर बनना है। तो वो कभी डॉक्टर बनेगा वो पूछने वाले को ख्याल है। हाँ, वेदना आने का 5 पॉइंट है, मैंने डायरी में लिया है एक बात, कि एक तो हमारे परिभ्रमण की चिंता, भावी परिभ्रमण की चिंता हो जाए तो वेदना आएगी। भावी परिभ्रमण के कारणभूत परिणाम चलते हैं वो नजर में आएगा तो भी वेदना आएगी। हमारे स्वरूप की प्राप्ति का अभाव है, परमात्मा अंदर विराजमान है लेकिन पर्दा नशीन है, हमको दिखने में नहीं आता, उसकी वेदना आ सकती है। हमको तो वही आई थी, वो भी वेदना आ सकती है। सत्पुरुष एकमात्र के सिवा हमारी गाड़ी इसमें आगे बढ़ने की संभव ही नहीं है, तो उसका भी योग की वेदना भी आ सकती है। और सुगानी जी को वो वेदना थी कि हमको शांति नहीं है, हम पूजा करते हैं, शास्त्र स्वाध्याय करते हैं, योग प्रयोग ध्यान सब कुछ करते हैं, शांति नहीं मिलती है। तो वर्तमान जो अशांति चालू है उसकी वेदना थी। ऐसे 4-5 पॉइंट है, कहीं से भी वेदना तीव्र आनी चाहिए। इसके बिना अंतःकरण की शुद्धि नहीं। अंतःकरण की शुद्धि माने क्या है कि हमने अभिप्राय नहीं बदला कि संसार है उपासनीय नहीं है, एकमात्र मोक्ष ही उपासनीय है, परिभ्रमण से जैसे कैसे छुपना ही चाहिए किसी भी कीमत पे, एट एनी कॉस्ट। ऐसा अभिप्राय ये वेदना से ही बदलता है, पहला अभिप्राय, बाकी के दूसरे दूसरे अभिप्राय आगे के स्टेज में बदलेगा। मुमुक्षुता है वो अभिप्राय बदलने की भूमिका है, इसके सिवा दूसरा आगे का काम कोई मुमुक्षुता की भूमिका में हो ही नहीं सकता। कोई कितना भी त्याग विराग करके कुछ भी कर ले, मुनि बन जाए तो भी, दीक्षा धारण कर ले तो भी, अभिप्राय पहले बदलना पड़ेगा, और इसकी भूमिका है ये मुमुक्षुता की। आगे आगे के स्टेज में दूसरे भी अभिप्राय बदलेंगे, किस स्टेज में किस अभिप्राय बदलने की, कैसा कैसा अभिप्राय बदलता है वो भी अपनी डायरी में व्यवस्थित रूप से एक पॉइंट लिया है। मतलब वो है कि ऐसे सिस्टमेटिकली काम होगा, तो स्पष्टीकरण लेने की भी जरूरत नहीं है, काम में लग जावे, प्रवेश हो जाए। मुमुक्षुता की जो परिणामों की ऊर्ध्व श्रेणी है उस श्रेणी में, पहली श्रेणी में प्रवेश कर लो, फिर दूसरी श्रेणी में आई जाओगे, तीसरी में आई जाओगे, फिर ऑटोमेटिक है। पहला प्रवेश कठिन लगेगा वो बात जरूर है, फिर भी एक निश्चय करना है कि ये काम करना ही है, वहां तक दूसरे काम में लगना नहीं है। आपत्ति तो उसमें है, ज्यादा कठिनाई तो उसका कारण से है, ये काम करना है ऐसा समझने पर भी हम दूसरे काम में लग जाते हैं, इसलिए कठिनता जो ज्यादा लगती है वही कारण से लगती है। और इसका कारण है कि हमको इसका लाभ नुकसान जो भाषित होना चाहिए वो नहीं हुआ है, ये कारण। मतलब कोई ऐसी बात नहीं है सिद्ध पद तक जीव पहुंचता है तो ये तो क्या है, ये तो शिलान्यासी करने की बात है। सिद्ध पद तक तो पहुंच सकता है, अनंत पहुंचे हैं, क्यों नहीं हो गए, क्यों नहीं हो गए ऐसा करके। दुख था એનો વાંધો નહી, ભલે દુઃખ થાય પણ આખરમાં કામ તો ચાલુ થવું જોઈએ। એક દુઃખ થવાને અંતે પણ રિઝલ્ટ આવવું જોઈએ કે આપણે કામ ચાલુ કરીએ, આપણે દુઃખ થઈને કોઈ નાસીપાસ થવાની જરૂર નથી। હા બની શકે, અનુસંધાન કરી શકો છો, ઉપરની ભૂમિકાનું અનુસંધાન તમે કરી શકો છો. ખ્યાલ રાખો કે જેટલું મોડું થશે, જેટલી દેર લગેગી ઉતની કઠિનતા બઢેગી, કઠિનાઈ બઢેગી. ક્યોંકિ હમારે પરિણામ તો રૂકતે નહીં હૈ, ઓર જગહ લગતે હૈ. હમારે પરિણામ તો ઓર જગહ લગતે હૈ. ઉલટિ ચાલ તો ચાલુ હૈ, ઉલટા પ્રયોગ ચાલુ હૈ. રોજ માલુમ પડ જાતા હૈ કે દેખો ઇધર ખીચા હો ગયા, ઇધર હો ગયા, વો હો ગયા, વો હો ગયા, વો હો ગયા. કે ક્યોં હોતા હૈ? તો હમકો બોલના પડતા હૈ કે દેખો જહાં તક લાઈન હાથ મેં નહીં આયેગી, પરિણામ કા ઠિકાના રહેને વાલા નહીં હૈ. એક પતંગ કી દોરી હાથ મેં હોને સે થોડા બહોત કંટ્રોલ કર સકતે હું પતંગ કો, લેકિન જિસકે હાથ મેં દોરી નહીં હૈ ઉસકા પતંગ કહાં જાયેગા, કૈસે પતા ચલેગા? વો તો કટા હુઆ પતંગ હૈ, ઉસકા તો કોઈ ઠિકાના નહીં રહેગા. તો ઇસ તરહ સે જ્ઞાન જ્ઞાન કો પહેચાનતા હૈ કબ? કે અંતરંગ મેં સૂક્ષ્મ અનુભવ દ્રષ્ટિ સે ઉસકા દેખને કા પ્રયાસ હોતા હૈ. વો બાત લિયા હૈ વિજ્ઞાન કી પ્રક્રિયા મેં પંડિત રાજમલજી ને 126 નંબર કે કલશ મેં લિયા હૈ. ક્યા બાત? જો વિભાવને એના લક્ષણથી પકડાણું હોય તો એક પ્રક્રિયા ઓટોમેટિક બનવાની, કે વિભાવમાં દુઃખ છે, આકુળતા એટલે દુઃખ છે, મલિનતા પણ છે, બરાબર છે, અને પોતાના પોતાથી વિપરીત વિરુદ્ધતા પણ છે, વિપરીતતા એટલે વિરુદ્ધતા પણ છે. જો એ ત્રણેય વાત પકડાય તો એક નવો ફેક્ટર ઉત્પન્ન થવો જોઈએ. જો એ ફેક્ટર ઉત્પન્ન ન થતો હોય તો એ પકડાનું નથી, સમજાણું છે. પકડાનો હોય તો ત્યાંથી ખસવાનો સહેજ પ્રયાસ થઈ જાય. કેમ કે જીવનો એવો સ્વભાવ છે કે દુઃખ લાગે એટલે હટે, મલિનતા લાગે એટલે પણ હટે, અને વિરોધી જોવે એટલે પણ સામે વિરોધ થઈ જાય. એટલે એ ત્રણ મુદ્દા જો પરખમાં આવે તો અહીંયાથી કસવાની સહજ પ્રક્રિયા આવે, અને પછી જ્ઞાન ઉપર આવે. એમને જ્ઞાન ઉપર નો આવે, આ એનું યથાર્થ લક્ષણ આ છે. કે ઓલી ત્રણ વાત ભલે નાસ્તિની છે, અને પહેલાં નાસ્તિ સ્થૂળ છે એટલે પહેલી સમજમાં આવશે, નાસ્તિમાં ઊભો છે, ચાલુ છે, પણ જો પરખ આવે તો ત્યાંથી ઘટીને જ્ઞાન ઉપર આવે. એ જો પ્રકાર હોય તો એ પ્રેક્ટિકલ સાઈડ છે, અને નહીતર એક વિચારમાં વિકલ્પમાં એ વાત ચાલે છે, પણ પકડાણી નથી. આ તો એક એની ઓટોમેટિક પરિસ્થિતિ છે. ભૂલથી પણ તમારો હાથ સળગતા કોલસા ઉપર મુકાઈ જાય તો શું થાય? ચાલો, તમને ખબર નથી કે કોલસો પડ્યો છે, તમારો હાથ બાજુમાં મુકાઈ ગયો, બાજુમાં કોલસો પડેલો હતો, તમને ખબર નથી, ભૂલથી મુકાઈ ગયો, તમને ખબર નથી શું થાય? ઝાટકો મારીને ઉપાડી લ્યો કે નહીં? જેવો તમે દાજો એ ભગવ ઝાટકો ખાય કે ન ખાય, તો આકુલતા છે તો દાજે છે, શાંતિ દાજે છે, આત્માની શાંતિની વિરુદ્ધતા છે એની અંદર, અને આકુલતા છે શાંતિને દજાડીને ઊભી થયેલી છે. અને આ તો આ વિચારનામાં તો મંદ કસાયની શાંતિ છે, એ દજાડે છે, અને સીધો ઝાટકો ખાય, એની પ્રેક્ટિકલ સાઈડ છે. એમને એમ ન આવે, એમ જ લ્યો તો એ એક વિચારનાની ભૂમિકા થઈ જાય છે, સમજની ભૂમિકા થઈ જાય છે. એ વાત તો આપણને સમજાણી છે. હવે તો એપ્લિકેશન આવવું જોઈએ. એપ્લિકેશન ક્યારે આવે? ઓટોમેટિક, કે તમે નીચેની ભૂમિકાઓ બુદ્ધિ પસાર કરી હોય તો જ આવે, નહીંતર તમારી દશા એટલી કેળવણી ન હોય, કેમ કે તમે એ દુઃખથી ટેવાઈ ગયા છો. તમારી દશામાં જે દુઃખ છે એ દુઃખથી તમે ટેવાઈ ગયા છો, એટલે નહીં ઝાટકો ખાવ. વિભાગના ત્રણ મુદ્દા પરખાય પછી ત્યાંથી હટે કે સામે નિરાકુરતા શાંતિરૂપ જ્ઞાન સ્વભાવ એ જ સમયે સાયમલ્ટેનિયસલી દેખાય ત્યારે જ વિભાવને પરખો, કે નહીં પહેલા હટે પછી આવે જ્ઞાન ઉપર. હે, ના 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 ના, કઈ હજી તો હજી સુખ જોવાની વાર ઘણી છે, હજી તો હટે પહેલા, ભાગે ત્યાંથી, અને ભાગીને આવી ન શકે ત્યારે મૂંઝાય. આ દશા સુગનીજીની હતી, કે ત્રાસ પામી ગયા હતા વર્તમાનમાં, મંદ કસાયની શાંતિથી ત્રાસ પામી ગયા હતા, એટલા ત્રાસ પામી ગયા હતા ને એટલી વેદના ઉપડી હતી એ સ્ટેજે કે પ્રાણ છૂટી જશે મારા, એ ટોપ લેવલની વેદના હતી એમની. કેટલી વેદનાની ડિગ્રી એટલી ટોપ લેવલની થઈ ગઈ કે એમને એમ થઈ ગયું કે કદાચ મારો હાર્ટફેલ થઈ જશે આ વેદનાથી, સહન નહોતા કરી શકતા, પ્રાણ છૂટી જાય એવી વેદના હતી. તો એ જે આવી વેદના એ એક્સ્ટ્રીમ પોઈન્ટની આવી, એક્સ્ટ્રીમ પોઈન્ટની એટલી વેદનાએ એમની યોગ્યતા એકદમ તૈયાર કરી દીધી, પાત્રતા એકદમ પાત્રતામાં આવી ગયા, કેમ કે એને હવે આત્મશાંતિ સિવાય કંઈ જોતું જ નથી. બસ પછી તો જેવી દિશા સૂચન મળ્યું ગુરુદેવથી એ કામ ફટાફટ ઉકળ્યું, કેમ કે પછી અવરોધ હતો નહીં કોઈ વાતનો, એટ્રેક્શન ક્યાંય હતું નહીં. આ પ્રશ્ન ઘણાને થાય છે કે અમે આત્મા જોયો નથી, આત્માની શાંતિ નથી જોઈ, તો અમે એ દેખાય તો અમે એ બાજુ જઈએ ને, એ દેખાય તો અમે બાજુ જોઈએ ને, કોઈ દી બી કામ થવાનું નથી. એ રીતે સાચું દુઃખ જોવે તો હટા વગર રહે નહીં, અને હટીને સુખ ઉપર આવી ન શકે ત્યારે મૂંઝાય, એમની એ સિચ્યુએશન થઈ હતી, એમને કોઈ દેખાડનાર નહોતું મળતું. અને અહીંયા સિચ્યુએશન થઈ નથી તો દેખાડનાર મળે તો ફેલ જાય, અને કંઈ કામ ન થાય. એકસો છવ્વીસ ની ટીકા છે. અગિયાર સુધી લેવું છે, દસ છસો રૂપિયા સાથે એક કલાક રાખીએ છે, ટાઈમ બે ટાઈમ થઈ ગયું છે, બરોબર કરું. જેને ઘરે પુસ્તકો નીચે છેલ્લે ચાર પાંચ મિનિટમાં એ વાત છે, વેદજ્ઞાન કેવી રીતે થાય છે, રીત બતાવે છે ત્યાં, પદ્ધતિ કે આ રીતે અંતરંગ સૂક્ષ્મ અનુભવ દ્રષ્ટિ છે જોવામાં આવે તો એ રાગ વેદનથી જ્ઞાન વેદન જુદું પડી જાય છે, વેદન પકડાય એટલે સીધું રાગથી જુદું પડી જાય છે, નહીંતર તો રાગની સાથે એકત્વ છે એ છૂટે નહીં. હા એ તો મોક્ષ અધિકારમાં છે ને, વિજ્ઞાનનો વિસ્તાર થયેલો છે એમાં નથી. સમયસર આખું શાસ્ત્ર વિજ્ઞાનથી ભરચક છે અને એક જ વિધિ છે. અનેક પડખેથી પ્રકાશ પાડ્યો છે આચાર્યોએ, ગુરુદેવે પણ અનેક પડખેથી વિજ્ઞાનનો પ્રકાશ પાડ્યો છે. ગુરુદેવ તો ફોર્મમાં આવતા એ વિશે હાથમાં આવે ત્યારે. એસા સૂક્ષ્મ ભેદ કર સકતા હૈ, નાન જ્ઞાન કો પહેચાન સકતા હૈ, ઓર એસા સૂક્ષ્મ ભેદ પાડ સકતા હૈ, મને સ્વભાવ ઓર વિભાવ અલગ અલગ હૈ, એસા સૂક્ષ્મ ભેદ પાડ સકતા હૈ. રાગ હૈ વો જ્ઞાન મેં પ્રતિબિંબિત હોતા હૈ, રાગ હૈ વો ખુદ સ્વયં કો નહીં જાનતા, વો તો જ્ઞાન મેં પ્રતિબિંબ પડતા હૈ તબ માલુમ પડતા હૈ કે રાગ ભી હૈ. તબ પ્રતિબિંબ જબ પડતા હૈ તબ જ્ઞાન ગિયાકાર હોતા હૈ, રાગ ગે હો ગયા તો જ્ઞાન હૈ વો ગિયાકાર હોતા હૈ. તો દર્પણ મેં દર્પણ ઓર પ્રતિબિંબ અલગ અલગ ચીજ હૈ, એસા સૂક્ષ્મ ભેદ નિકાલના હૈ. ક્યા જબ પ્રતિબિંબ હૈ તો વો રાગ હૈ વો રાગ હૈ ઓર જ્ઞાન હૈ વો જ્ઞાન હૈ, ઉસકો અલગ અલગ કરના હૈ. વો તો હટને કા સવાલ હી નહીં, પ્રતિબિંબ હટેગા કેસે. હું તમારી સાથે બેઠો છું, તમારી આંખમાં મારો ફોટો પડે છે, તમે કેવી રીતે એને બંધ કરો? આંખ ખુલ્લી રાખ્યા પછી આંખ ખુલ્લી છે, તમે દેખાવાનો છો. ચાલુ જ રહે એટલે એ પ્રતિબિંબને હટાવવાની મૂર્ખામી અથવા મિથ્યા પરિશ્રમ તો કરવાની જરૂર જ નથી. એ તો આંખ ફોડી નાખવાની વાત છે. હા કે આંખ જો આંખ ઉગાડી રાખવાથી આમ થાય છે માટે આંખ ફોડી નાખો, એ તો ખોટો જ રસ્તો છે. એને તમે ગૌણ કરી શકો છો કે નહીં, આટલી જ વાત છે. એ શક્યતા છે. મુખ્ય ગૌણ તો તમે કરો જ છો, દરેક કાર્યમાં તમે મુખ્ય ગૌણ કરીને જ કાર્ય કરો છો. કેમ કે ઘણી વાતો છે, તમારે જે કામ હાથમાં લેવું એને મુખ્ય કરો છો, બાકીના કામને પછી કરીને ગૌણ કરો છો. એ તો તમારી ડેઇલી પ્રેક્ટિસ છે. તો મુખ્ય ગૌણ કરને કો તો આતા હૈ, અબ ઇસકો ગૌણ કરના હૈ, નિરાકાર જ્ઞાન કો ગૌણ કરના હૈ ઓર જ્ઞાન વેદન કો મુખ્ય કરના હૈ, પહેચાનને કે બાદ વહાં હૈ. દેખો જ્ઞાન મેં જ્ઞે કા પ્રતિબિંબ હુઆ, તો જ્ઞપણા હૈ વો જ્ઞાન હૈ. જ્ઞાન મેં રાગ કા પ્રતિબિંબ હુઆ તો આભાસ મેં તો વહી હોતા હૈ કે મુજે રાગ હુઆ, મુજે ક્રોધ હુઆ. ક્યા ક્યા કર હો જાતા હૈ, રાગ મુજે હુઆ, ક્રોધ મુજે હુઆ. જબકે જ્ઞાન કો ક્રોધ નહીં હુઆ હૈ, જ્ઞાન ને ક્રોધ કો જાના હી હૈ, ઇસસે આગે જ્ઞાન કા કોઈ કામ હૈ હી નહીં, હો ભી નહીં સકતા. તો ભેદ જ્ઞાન મેં તો ગેર સ્વભાવ હૈ વો તો સામાન્ય હૈ, તો સામાન્ય તક આવોગે નહીં વહાં તક ભિન્નતા હોગી કહાં સે. જ્ઞાન ઓર રાગ કી ભિન્નતા છે વો જ્ઞાન ઓર જ્ઞે કી ભિન્નતા હૈ. વો ભિન્નતા આયેગી કૈસે કે સામાન્ય મેં આવું તબ તો હોગી. ઇસકે સે ઇસકા જ્ઞપણા હૈ, ઉસમે જ્ઞપણા નહીં હૈ રાગ મેં. તો સામાન્ય કો લક્ષ્ય મેં લીએ બિના ગ્રહણ કે બિના ભેદ જ્ઞાન હોને કા તો કોઈ પ્રશ્ન હી નહીં હૈ. તો ઉસ તરહ સે ઉસકા જો પ્રેક્ટિસ ચાલુ અંતરંગ મેં હોવે, ઇસ ભૂમિકા મેં આ કરકે, તબ તો ઉસકી કાર્ય સિદ્ધિ હૈ. દૂસરા કોઈ કાર્ય પદ્ધતિ, કોઈ તરીકા, કોઈ વિધિ હૈ નહીં કામ કરને. ये सुखी निर्मलता तो ये भूमिका में आगे बढ़ेगा तब तो हर तो नहीं आएगा, इसके पहले कोई निर्मलता आने का सब तो ऐसा सूक्ष्म भेद पाड़ सकता है। सूक्ष्म भेद मैंने क्या कि ज्ञान में राग नहीं है, ज्ञान में ज्ञान ही है, राग का तो प्रतिबिंब है, वो प्रतिबिंब है, वो प्रतिबिंब वो भी ज्ञान के पर्याय है, राग के पर्याय नहीं है। जो दर्पण में प्रतिबिंब उठा वो पर्याय किसकी, दर्पण की है, बिंब की नहीं है। बिंब का प्रतिबिंब होता है, बिंब अलग है प्रतिबिंब अलग है। और ज्ञान नियाकार हुआ, राग का आकार हुआ तो भी वो ज्ञान ज्ञान ही रहा है, राग रूप नहीं हुआ, अज्ञानी का भी, लेकिन वहां आभास हो जाता है तो ज्ञान को चुपता है, ज्ञान को नहीं समझ सकता। तो राग को भी नहीं समझा तो ज्ञान को तो समझने का सवाल ही नहीं। इसलिए सिस्टमेटिकली काम करना पड़ता है। अपने यहाँ समय सार का तो स्वाध्याय गुरुदेव की कृपा से बहुत चला और लोग वेद ज्ञान की चर्चा भी करते हैं, और वेद ज्ञान में से अभेद ज्ञान में ज्ञायक हूँ मैं, ज्ञायक वो भी चलता है, सफलता कहाँ होती है? तो क्यों नहीं होती है फिर इसकी जिज्ञासा नहीं, समस्या में खड़े सब, नहीं होता है, करने जाते नहीं होता है, करते तो हैं लेकिन होता नहीं है, लेकिन उल्टा करते सीधा करते हो तो मालूम नहीं, ये बात हो जाती है। ऐसा सूक्ष्म भेद कर सकता है, स्पष्ट पहचान सकता है, क्या स्वभाव की पहचान है वो एकदम स्पष्ट है, क्योंकि अनुभव अंश से वेदन अंश से होती है, इसलिए बहुत स्पष्ट है। अनुमान होता है तो अस्पष्ट होता है, ये अनुमान का विषय नहीं है, स्वरूप है, स्वभाव है, कोई तर्क और अनुमान का विषय नहीं है। जैसे बाहर में शंका भी नहीं पड़ती, बाहर में भी शंका नहीं पड़ती, और कोई तर्क कि ये आदमी है या ये मनुष्य है तो कहे कि वही है, बिना विचारे तर्क बिना भी वो निश्चित कर देता है कि यही आदमी है, दूसरा सब कहता है वो गलत है, वही आदमी है, सब कोई भ्रम में डालता है तो भी पकड़, जो पहचानता है वो तो पकड़ लेता है, जो पहचानता है वो तो पकड़ लेता है कि कोई भी वेश पलटा कर दिया, लेकिन पहचानने वाला पहचान नहीं जाता है। देखो ना, ये जो गुनेगार लोग होते हैं वो वेश पलटा करके पड़ते हैं, जिसको स्पेक्स नहीं वो स्पेक्स पहनते हैं, स्पेक्स होता है तो निकाल देते हैं, या दाढ़ी मूछ नहीं होते तो दाढ़ी मूछ बना लेते हैं, और रखते हैं तो निकाल देते हैं, कई प्रकार के चेंजेस करने पर भी गुनाशोधक लोग उसको पकड़ लेते कि वही आदमी है, पकड़ते कि नहीं पकड़ते, वेश पलटा करता है और इतना तो चेहरे पे फेरफार कर देता है, बाल है तो मुंडन कर देता है, मुंडन है तो बड़ा बाल कर देता है, पूरा चेंज कर लेता है हर बात में, तो भी वो पकड़ा जाता है। क्या वो गुना सुधक लोग भी एक्सपर्ट है, वो भी एक्सपर्ट है, कभी कभी ऐसी घटना घटती है कि वो आदमी को देखा नहीं है और उसका जो कुछ चिन्ह मिलता है वो जहाँ उस पर से उसका चेहरा को कंप्यूटराइज करते हैं, क्या करते हैं कंप्यूटराइज करते हैं कि ऐसा 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 ऐसा, कंप्यूटर में उसको चेहरा को ले लेते हैं पूरा नहीं आवे तो भी कुछ अंश में आ जाता है, और उस पर से वो कितना भी वेश बदले पकड़ लेते हैं। तो ये ज्ञान की ताकत ऐसी है। परद्रव्य के विषय में उतनी ताकत जिस ज्ञान ज्ञान की है तो यहाँ तो बहुत सुविधा है कि खुद का ही खुद को वेदन है, वो खुद को ही खुद को देखना है, कहीं उधर उधर जाना नहीं और कोई साधन की जरूरत नहीं जिसमें, उसमें तो कई प्रकार के साधन चाहिए, यहाँ तो कोई साधन की जरूरत नहीं, एक भी साधन की जरूरत नहीं, पहचान भी होगा और अनुभव भी होगा बिना साधन से, क्योंकि खुद ही साधन स्वरूप है आत्मा, ज्ञान खुद ही साधन स्वरूप ही है खुद, छह कार्य को अपने आप में ही है, एक पर्याय में है और आत्मा के सभी गुण में है, तो इतनी तो सुविधा है इसमें। ऐसे अपने का नक्की कर सकता है कि यही ही मैं हूँ, क्या यह ही मैं हूँ और ऐसा ही यही मेरा अस्तित्व है, यही मैं हूँ और यही मेरा अस्तित्व है। तो आइंदा इस विषय पर जिसको लगता है कि हमको इस विषय पर प्रयोग करना है तो आप ये बताना कि आप रोजाना कैसे कैसे किस किस को गौण किया और किस तरह से किया, इसे पता चल जाएगा कि प्रयोग बराबर चलता है कि नहीं चलता है। अगर प्रयोग की चर्चा करनी है और प्रयोग में आकर के प्रयोग की चर्चा चलेगी तो प्रयोग में नहीं आएंगे, प्रयोग की चर्चा नहीं कर सकते, तो प्रैक्टिकल साइड है। तो देखो कि हम सारे दिन के जो उदय है उसमें हमारे कई प्रकार के परद्रव्यों के साथ भी हमारा व्यवहार है, जब से उठते हैं तो जो नित्य नियम है तो उसमें सारा शरीर का ही कार्य है, स्नान करना, लेटरिन जाना, चाय नाश्ता करना, मुंह साफ करना, माउथ वॉश ब्रश वगैरह करना, सब में परद्रव्य के साथ ही हमारा व्यवहार चलता है। तो हम कितना गौण करते हैं सभी सभी उदय में परद्रव्य को, परद्रव्य के संबंधी हमारे परिणाम को और आगे जा कर के उस विषय ज्ञान को, तभी ये ज्ञान सामान्य की बारी आएगी। तो बात तो भीतर में गहराई में जाने का है, ये बात ऊपर ऊपर की नहीं है, गहराई में जाने की बात है। अनुभव का विषय विस्तार वाला नहीं है लेकिन गहराई वाला है। ज्ञान का दो क्षेत्र है, एक विस्तार का और एक गहराई का। तो ये जो अध्यात्म का विषय है वो गहराई का है, विस्तार का नहीं है। विस्तार वाला ज्ञान बहुत है, न्याय लॉजिक है उसमें विस्तार बहुत है, साइंस में भी विस्तार बहुत है, कैलकुलेशन में, गणित में भी, गणितानुयोग में भी, ये सब चारों अनुयोग में विस्तार है, चारों कथा चारों अनुयोग का। चारों अनुयोग में जो अध्यात्म है उसमें विस्तार नहीं है, उसमें गहराई है। तो हमको गहराई में जाना है, तो देखो कितनी गहराई में जा सकते हैं उसकी चर्चा करो तो पता चल जाएगा। क्योंकि अपने आप को निश्चित कर सकता है कि यही मैं हूं, यही मेरा अस्तित्व है और मेरा अस्तित्व ऐसा है, यही है, मैंने पहचान लिया तो ऐसा ही है। जब ये होगा इसका लक्षण है, पहचान होगा तो इसका लक्षण क्या पहचानने का, वो अपने तो प्रकरण पूरा लिखा है, 13 साल पहले लिखा है, 13 साल नहीं तो 14-15 साल हो गया ये स्वरूप निश्चय का, निर्भ्रांत दर्शन की पगडंडी में। इसका खास लक्षण तो वो है कि महिमा बहुत आएगी, ऐसा मेरा अस्तित्व है या मैं ऐसा हूँ, खुद अनंत महिमावंत होने से उसकी महिमा रोकी नहीं जा सकेगी, और उतना स्वरूप सन्मुखता का खिंचाव चालू होगा कि उदय में परिणाम जाएंगे, वो छिटक छिटक कर इधर आएंगे, ये इसका लक्षण है, रुचि महिमा और पुरुषार्थ। नहीं और भी 9-10 लक्षण और भी लिया है तो टैली कर सकते हैं। तर्क बिना, कैसे तर्क बिना निशंक रूप से अपने को ग्रहण कर सकता है कि यही मैं हूँ, दूसरा मैं नहीं, रागादि मैं नहीं, ऐसे निशंक रूप से ग्रहण कर सकता है। क्या है ठोस निशंकता आती है वहाँ। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई शंका भी रह जाए, थोड़ा संदेह भी रह जाए, ऐसी बात नहीं है। हाँ तो बात लिया है, इस शब्दों में लिया है वो प्रकरण में, कि मैं सिद्ध पद स्वरूप हूँ स्पष्टतया। तो वो जो सिद्ध पद है, सामर्थ्य रूप जो सिद्ध पद है और व्यक्ति रूप जो सिद्ध पद है वो एकदम सिमिलर है। एक सामर्थ्य रूप है, एक शक्ति रूप है, शक्ति की ही व्यक्ति हुई है वहाँ। तो जो व्यक्ति वहाँ हुई है उसमें अनंत प्रत्यक्षता मौजूद है। क्या है? अनंत प्रत्यक्षता मौजूद है। और यहाँ भी शक्ति रूप में अनंत प्रत्यक्षता मौजूद है, सिमिलर है ना। तो मैं सिद्ध पद रूप ही हूँ ऐसा नहीं, मैं साक्षात सिद्ध पद रूप हूँ ऐसा मान लिया है। साक्षात मैंने क्या, सौ अक्षत मैंने प्रत्यक्ष। तो वो प्रत्यक्षता भासती है अपने पद की, अपने परमात्मा पद की। तो पुरुषार्थ उठाना नहीं पड़ता, वीर्य गुण की पर्याय उछल करके बाहर आएगी। जैसे कोई बाघ सिंह अपने शिकार पर छलंग लगाता है, वैसे पुरुषार्थ छलंग लगाएगा बाहर आने के लिए, छलंग मारेगा, ऐसी बात बनती है वहां। तो वो निशंक रूप से, निशंकता क्यों आई? प्रत्यक्षता के कारण निशंकता आई। अगर प्रत्यक्षता नहीं होगी तो निशंकता कहां से आएगी? परोक्षपणे में निशंकता आई नहीं सकती, प्रत्यक्ष बात हो, इसलिए अनुभवांश लिया है। वो ग्रहण कर सकता है, ग्रहण करता है कि मैं यही हूं, उसको अस्तित्व ग्रहण बोला है। उसको अस्तित्व ग्रहण कहते थे और कृपालु देव ने वो 220 नंबर व्याख्यान सार एक के वचनामृत में उसको अस्तित्व ग्रहण बोला, यही मेरा अस्तित्व है, यही मैं हूँ, ऐसा ही मेरा स्वभाव है, दूसरा मैं नहीं हूँ और रागादि तो मैं बिल्कुल नहीं हूँ, क्योंकि ये तो मेरे से विरुद्ध जाति का है, एकदम विरुद्ध जाति का है। राग में चैतन्य का आभास होता है क्योंकि अशुद्ध चेतना है। क्या है? जीव की पर्याय है ना चारित्र गुण के, तो अशुद्ध चेतना है, इसलिए इसमें चैतन्यता का आभास होता है। लेकिन जब निश्चय होता है स्वभाव का, तब राग बिल्कुल मैं नहीं हूं स्पष्ट आता है, बिल्कुल मैं राग नहीं हूं। ऐसे निशंक रूप से ग्रहण कर सकते हैं, परंतु स्वयं पुरुषार्थ करता नहीं, वहां तक पहुंचने का, वहां तक कार्य करने का पुरुषार्थ खुद ही नहीं करता तो काम नहीं होता। ये सब बात पुरुषार्थ से होने वाली है, सिर्फ विचार से होने वाली नहीं है, ये पुरुषार्थ से होने वाली बात है। इस तरह से 310 का प्रश्न यहाँ समाप्त होता है। यथार्थ विधि थी। आत्मस्वरूप ने ओळखी शकाय छे। वेदनुभूत ज्ञान लक्षण थी ज्ञान स्वभाव ने ओळखी शकाय छे। સ્પષ્ટપણે અને નિશંકપણે ઓળખી શકાય છે। પરંતુ ઓળખવા માટે ઓળખવાની ભૂમિકા સુધી પહોંચવું ઘટે છે। અને તે ભૂમિકાનો પુરુષાર્થ હોવો ઘટે છે।